नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आयु कपिल और हम डिस्कस कर रहे थे आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक में चैप्टर नंबर 3। हम बच्चों इस चैप्टर में पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और विश्व के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें जानी थी कि प्राचीन भारत के कैसे रिलेशन थे बाकी की दुनिया के साथ, जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें किस प्रकार से अलग अलग चीजें थी, तब साहित्य कैसा था, संस्कृति कैसी थी, विज्ञान कैसा था, कला कैसी थी। इसी में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और अब हम पेज नंबर 30 से कंटिन्यू करेंगे गणित को, जो टॉपिक नंबर 4 है गणित। हम अब जानेंगे कि पुराने भारत में गणित का किस प्रकार से विकास हुआ। तो पेज नंबर 30 खोलेंगे आप अपनी बुक का और उसमें आप निकालेंगे गणित वाला पैराग्राफ, हम स्टार्ट करेंगे। भारत का गणित में सबसे बड़ा योगदान शून्य का आविष्कार है, जिसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था। पूर्णांक के साथ अपूर्णांक भिन्न को व्यक्त करने के लिए दशमलव के प्रयोग द्वारा गणित के विकास का क्रांतिकारी आधार प्रस्तुत करने वाली दशमिक प्रणाली मूलतः भारत में निर्मित हुई, जो 7वीं सदी के बाद संस्कृत से अरबी और लैटिन में हुए अनुवाद ग्रंथों के माध्यम से संसार भर में प्रचलित हुई। ये कहते हैं जो गणित है उसमें भारत का एक अपना योगदान रहा है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में शून्य का आविष्कार किया था बच्चों, और आज शून्य के बिना हमारा जो गणित है वो अधूरा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, दशमलव जो आप लगाते हैं, वो भी हमारा भारत की ही देन है विश्व को। पूर्णांक के साथ अपूर्णांक यानी भिन्न को व्यक्त करने के लिए दशमलव का प्रयोग जो है वो मूलतः भारत में पैदा हुआ। भारत ने दशमिक प्रणाली दी पूरे विश्व को और ये एक क्रांतिकारी विकास था गणित के क्षेत्र में, जो कि भारत ने पूरे विश्व को दिया था बच्चों। 7वीं शती के बाद संस्कृत से अरबी और लैटिन में जब अनुवाद हुआ ग्रंथों का, तो उसके माध्यम से पूरे संसार भर में ये जो नॉलेज थी हमारी ये फैली। वर्गमूल और घन मूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज चतुर्भुज तथा वृत्त की परिधि, एक क्षेत्रफल निकालने के सूत्र, चक्रीय चतुर्भुजों के परस्पर छेदने वाले विकर्ण और उनका उपयोग, समानांतर गुणोत्तर श्रेणी तथा उनका समाकलन आदि का ज्ञान 6वीं शती में आर्यभट्ट को था। इतना ही नहीं, वृत्त परिधि एवं व्यास के अनुपात दर्शक सुप्रसिद्ध नियतांक पाई का 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ मान भी आर्यभट्ट ने ज्ञात किया। 7वीं शती के उत्तरार्ध में आर्यभट्ट के 4 ग्रंथों के लैटिन में अनुवाद हुए। घनात्मक संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत होता है, इसका ज्ञान भास्कराचार्य ने दिया। भास्कराचार्य के लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि दोनों ग्रंथ संसार की अमूल्य निधि हैं। गणित के क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन 2700 वर्ष पहले बोधायन ने किया था, जिसे चित्ती प्रमेय के नाम से जाना जाता था। तो आपने ये पढ़ा, आपको ऐसे ऊपर से समझ आया होगा कि जो जितनी भी मैथ्स की इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो शायद आपने अभी तक पढ़ ली होंगी, है ना, वो जो है हमें इंडिया ने दी, मतलब भारत में वो चीजें पैदा हुई, भारतीयों ने उन चीजों को दिया विश्व को। आप सोचो, डेसिमल सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दशमलव, उसके बिना तो मतलब गणित का कुछ भी नहीं हो सकता, वो हमने दिया विश्व को। जीरो शून्य जो है उसका यहाँ आविष्कार हुआ। ऐसे ही आगे बताते हैं, वर्गमूल और घनमूल निकालने की चाहे पद्धति हो या त्रिभुज चतुर्भुज और वृत्त की परिधि, एक क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो, जो चक्रीय चतुर्भुजों के परस्पर छेदने वाले विकर्ण और उनके उपयोग को बताए, या समानांतर गुणोत्तर श्रेणी या उसका समाकलन, इन सभी का ज्ञान आर्यभट्ट ने दिया है, भारत को नहीं पूरे विश्व को। आर्यभट्ट को इन सब का ज्ञान था 6वीं शती में, आप सोचें। इतना ही नहीं, वृत्त परिधि और व्यास के अनुपात दर्शक सुप्रसिद्ध नियतांक पाई का 4 दशमलव तक उनको ज्ञान था। आर्यभट्ट ने उस समय पता लगा लिया था कि जो पाई है, पाई की वैल्यू हम निकालते हैं ना 3.14, तो ऐसे 4 दशमलव, 4 डेसिमल पॉइंट्स तक, 4 दशमलव के स्थानों तक आर्यभट्ट ने पता कर लिया था कि इस पाई की वैल्यू, इस पाई का जो वैल्यू है वो ये आएगी। इस पाई का जो आपको कैलकुलेशन था वो उन्हें पता था, वो जानते थे उसको, और आज तक भी पाई को एग्जैक्टली तो कोई बता ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो तो चलता रहता है। तो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक आर्यभट्ट को उस समय इसका ज्ञान था। आप सोचे, उन्होंने जो हमारे यहाँ भास्कराचार्य थे, उन्होंने उस वक्त बता दिया था कि जब आप घनात्मक संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो भागफल अनंत होता है, जो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट होगा। तो उन्होंने उस वक्त बता दिया था कि अनंत भागफल आएगा जब आप किसी घनात्मक संख्या को शून्य से भाग देते हैं। भास्कराचार्य के लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि, ये दोनों ग्रंथ संसार की अमूल्य निधि हैं। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जो हैं, ये दोनों ग्रंथ ये उन्होंने दिए हैं पूरे संसार को। और जो आज हम पाइथागोरस यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसका प्रतिपादन 2700 वर्ष पहले बोधायन ने किया था, और जिसे हम चित्ती प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट है ज्योतिष एवं खगोल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने जानी कि गणित में भारत ने कितना ज्यादा योगदान दिया है। आगे हम जानेंगे कि ज्योतिषी और खगोल के क्षेत्र में भारत को कितना ज्ञान था और उसका क्या योगदान रहा विश्व को। गणित के आधार पर ज्योतिष की भी प्राचीन काल में प्रगति हुई। आर्यभट्ट गणितज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिष का भी विद्वान था। उसने ही पृथ्वी का अपनी कीली पर चारों ओर घूमने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों का पता लगाकर सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्रमास, 12 मास का वर्ष, चंद्र और सौर वर्ष के अंतर को समन्वित करने हेतु प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम अधिक मास द्वारा समयोजित आदि शास्त्र, शुद्ध खगोल सिद्धांत प्राचीन ज्योतिष विद्वानों ने प्रतिपादित किए। वारह मिहिर, कणाद, नागार्जुन, वाघ भट्ट आदि भारत के प्रमुख ज्योतिषाचार्य व खगोल शास्त्री थे। तो जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने ना सिर्फ गणित में योगदान दिया बच्चों, बल्कि जो ज्योतिष है उसमें भी योगदान दिया। जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जो हम अपना आसमान में कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग ग्रहों के आधार पर, चंद्रमा सूर्य के आधार पर धरती को देखकर, वो सारा कैलकुलेशन उनको पता था। उन्होंने ही गणितज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिष की भी विद्वानी कर रखी थी। पृथ्वी का अपनी कीली पर चारों ओर घूमने का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन उन्होंने किया था। अलग अलग ग्रहों और नक्षत्रों का पता लगाकर सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्रमास, 12 मास का वर्ष, चंद्र और सौर वर्ष के अंतर को समन्वित करने हेतु प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम अधिक मास द्वारा समयोजित आदि शास्त्र, शुद्ध खगोल सिद्धांत प्राचीन ज्योतिष विद्वानों ने प्रतिपादित किए। हमारे अलग अलग ज्योतिष विद्वानों ने ये सारी कैलकुलेशंस दी हैं जो हम आज भी यूज करते हैं, कि 12 राशियां होती हैं और चंद्रमा किस तरह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर करता है, भ्रमण करता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह भ्रमण करती है, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्रमास होता है, 12 मास का वर्ष होता है ना, इक्लिप्स होते हैं, चंद्र और सौर वर्ष में अंतर को समन्वित किया, तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम यानी जो अधिक मास होता है उसका समायोजन किया। तो जितने भी ये सारे आज हम चीजें देखते हैं, जो कंसेप्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिषी के, ये हमारे विद्वानों ने उसी समय बता दिए थे। वारह मिहिर, कणाद, नागा, अर्जुन, वाघ भट्ट, ये सारे प्राचीन ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री रहे हैं हमारे भारत के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, लास्ट इस चैप्टर का, वो है आयुर्वेद। तो प्राचीन काल में आयुर्वेद में किस तरह से भारत का योगदान रहा है, ये हम देखते हैं। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो कि भारत की देन है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। औषधि तथा रसायन विज्ञान में भारतीय दुनिया में सबसे आगे थे। भारत में धातुओं को शुद्ध करना व भस्म बनाना, जड़ी बूटियों से औषधियों का निर्माण करना, अनेक प्रकार के प्राकृतिक रंग बनाना आदि प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। नागार्जुन को कई रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान था। नागार्जुन ने रस चिकित्सा प्रणाली विविध धातुओं एवं अन्य वस्तुओं की भस्म बनाकर औषधि के रूप में उनका प्रयोग का आविष्कार करके चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन पद्धति का सूत्रपात किया। तो ये कह रहे हैं कि विश्व की जो सबसे पुरानी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वो है भारत की देन, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद बच्चों विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। औषधि तथा रसायन विज्ञान में भारतीयों ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है। दुनिया में सबसे आगे भारत रहा है औषधि और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अलग अलग धातुओं को शुद्ध करना, उनकी भस्म बनाना, जड़ी बूटियों से औषधि बनाना, दवाई बनाना, अनेक प्रकार के प्राकृतिक रंग बनाना, ये सब भारत में पुराने समय से होता रहा है। नागार्जुन को कई रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान था। नागार्जुन ने रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया था, जिसमें अलग अलग धातुओं से और अन्य वस्तुओं को मिलाकर उनकी भस्म बनाकर औषधि के रूप में उनका प्रयोग किया जाता था। तो उन्हें कितना हाई लेवल ज्ञान था केमिस्ट्री का, है ना, कि उन्होंने इतने सारी अलग अलग दवाइयां बनाई और उन्हें इतना ज्यादा केमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो आप पढ़ते हैं अपनी केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, उन्हें उसका ज्ञान कितना ज्यादा था। सुश्रुत विश्व का प्रथम सर्जन शल्य चिकित्सक माना गया है। उन्हें सिजेरियन, मोतियाबिंद, अंग प्रत्यारोपण, पथरी आदि की शल्य क्रियाओं के साथ बेहोशी की दवा का भी ज्ञान था। वे शल्य क्रियाओं में आने वाले 100 से भी अधिक उपकरणों का वर्णन करते थे। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो सुश्रुत थे हमारे देश में, उन्हें पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का पहला सर्जन माना जाता है बच्चों। शल्य चिकित्सक उन्हें पहला माना जाता है पूरे विश्व का। उन्हें सिजेरियन का, मोतियाबिंद, अंग प्रत्यारोपण, पथरी आदि सारी शल्य क्रियाओं का पूरा ज्ञान था। वो ये सब करते थे और बेहोशी की दवा का भी उन्हें ज्ञान था। पहले वरना बेहोशी की दवा नहीं थी। तो अगर किसी इंसान के कोई बीमारी है, यानी उसका कोई अंग कटना है या मतलब उसके ऑपरेशन होना है, तो वो चीजें आप सोचें कि इंसान को होश होता था और फिर की जाती थी, तो कितना दर्द होता था। एनेस्थीसिया या और कोई भी बेहोशी की दवा उन्हें नहीं दी जाती थी और वो पूरा दर्द सहते थे, आप सोचो उस वक्त। पर जो सुश्रुत थे उन्हें बेहोशी की दवा का ज्ञान था और वो इसकी हेल्प से लोगों को बेहोश करके उनका पूरा ट्रीटमेंट करते थे, पूरी सर्जरी करते थे। 100 से भी अधिक उपकरणों का वर्णन उन शल्य क्रियाओं में, जो 100 से भी अधिक उपकरण यूज किए जाते थे, उनका वर्णन हमें मिलता है। और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक का भी महत्वपूर्ण स्थान था। जो औषधि का विज्ञान था, मेडिकल साइंस जो थी, उसमें चरक का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने बहुत योगदान दिया है इस क्षेत्र में। इस प्रकार प्राचीन भारत का विश्व की सभ्यता व संस्कृति में अपना विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान है। यह बृहत्तर भारत के परिवेश तथा भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग आदि से संबंधित उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है। तो इस चैप्टर में बच्चों सच में वाकई में हमें गर्व होना चाहिए सब पढ़ के कि हमारे देश भारत ने प्राचीन काल से पूरे विश्व को कितनी भारी मात्रा में हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट में अपना योगदान दिया है। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, गणित हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, कला हो, कोई भी क्षेत्र हो, भारत हमेशा सबसे ऊपर रहा है ना, सर्वश्रेष्ठ रहा है। और इतना भारी ज्ञान है हमें हर चीज का हमेशा से, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस ज्ञान को पढ़ें, हम समझें अपने ज्ञान को, है ना। और लोग और देशों से आकर हमारा ज्ञान ले जा रहे हैं समझने के लिए और हम बैठे हैं उनकी कॉपी कर रहे हैं, तो हम अपना ज्ञान समझें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भारत में, बृहत्तर भारत में जो भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इन सभी से संबंधित जो विवरण है वो इतना व्यापक है कि यहाँ हमने उसका बहुत एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है, कि इंट्रोडक्शन समझें इसको आप, पर ये सब इतना व्यापक है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसे हमेशा प्रोपोगेट करें और संजो कर रखें, क्योंकि ये यही हमारी धरोहर एक्चुअल में जो हमें मिला है हमारे भारत में, जो भारतीयों ने जो चीज़ बनाई है, जो चीज़ सोची है, जिन चीज़ों को जन्म दिया है, जिस ज्ञान को जन्म दिया है, हमें उसे समझना चाहिए और उसको संजो कर रखना चाहिए, औरों को भी बताना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिवाइज करेंगे। पहला है, प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। एशिया के उस भूभाग को जहां प्राचीन काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारत की संस्कृति विस्तृत थी, बृहत्तर भारत कहते हैं। बृहत्तर भारत मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग में फैला हुआ था। बृहत्तर भारत में हिंदू मंदिर व बौद्ध स्तूप प्रायः सभी जगह पर पाए जाते हैं। प्राचीन भारत में मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित पदार्थ, कपड़े, मसाले, औषधियां आदि विदेशों में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। प्राचीन काल में व्यावसायिक संगठनों को श्रेणी, श्रेष्ठी या गण कहा जाता था। भारत की स्थापत्य कला के स्मारक चार रूपों में मिलते हैं, स्तंभ, स्तूप, भवन या मंदिर, गुहाग्रह। अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर बनी मूर्ति भारतीय मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय तथा उज्जैन, बनारस राजगृह एवं पाटलिपुत्र उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। प्राचीन भारत में तीन भाषाएं मुख्यतः प्रचलित थी, संस्कृत, प्राकृत तथा पाली भाषा। गणित के क्षेत्र में दशमलव तथा शून्य भारत की खोज है, जो विश्व को भारत की देन है। औषधि विज्ञान में सुश्रुत विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक सर्जन था। बृहत्तर भारत में बौद्ध धर्म एवं मुस्लिम धर्म के प्रसार के कारण भारतीय संस्कृति का प्रसार कम हो गया। ठीक है, अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है, प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कौन से देश को कहा जाता था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप बिना ऑप्शन देखे आंसर बता सकते हैं, जो ऑप्शन ब है, यानी अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट है, निष्क क्या है, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़े थे कि जो तीन प्रकार के सिक्के होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। पेज नंबर 28 पर बच्चों, जो लेफ्ट साइड पैराग्राफ है वाणिज्य व आर्थिक संस्थाएं, उसमें हमने पढ़ा था, आप देखो फोर्थ लाइन में लिखा है कि स्वर्ण का सिक्का निष्क, चांदी का सिक्का धरण और तांबे का सिक्का माशक या कांकणी कहा जाता है। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है मिश्क कौन सा सिक्का है, तो यानी मिश्क है और सोने का सिक्का। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, कुमार संभवम और रघुवंश नामक महाकाव्य किसने लिखे हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था, ये हमें वैसे भी याद होना चाहिए, ये लिखे हैं कालिदास जी ने। तो ऑप्शन आ होगा इसका आंसर, कालिदास ने लिखा है कुमार संभवम और रघुवंश नामक महाकाव्य। ये जो प्राचीन भारत का साहित्य है उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें संस्कृत साहित्य में इसका वर्णन है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है। तो ये हमने पढ़ा था, ये है बेलूर कर्नाटक में। पेज नंबर 30 पर जो विज्ञान वाला टॉपिक है उसमें हमने दो उदाहरण पढ़े थे, पहला पढ़ा था किसका, लोह स्तंभ का, और दूसरा पढ़ा था ये बेलूर कर्नाटक में केशव मंदिर में 40 फीट ऊंचा और 20,000 किलोग्राम का एक प्रस्तर स्तंभ है जो बिना सहारे समतल भूमि में बिना गाड़े खड़ा है। तो इसी विज्ञान वाले पैराग्राफ में इसका आंसर हमें पता चल गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन स, बेलूर कर्नाटक में। फिफ्थ है, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखे हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि किसने लिखे हैं, ये जो हमारा गणित वाला जो हमारा टॉपिक था पेज नंबर 30 पर, उस गणित वाले टॉपिक में लेफ्ट साइड लास्ट में, लास्ट थर्ड लाइन में आपको पूरी लाइन मिल जाएगी, भास्कराचार्य की लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि दोनों ग्रंथ संसार की अमूल्य निधि हैं, यानी ये लिखे हैं भास्कराचार्य जी ने। ठीक है, अब हम देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है, अंगकोर वाट के मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर पेज नंबर 26 पर लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा, कंबोज के बारे में, जो कंबोज वाला टॉपिक है उसमें आपको मिल जाएगा सेकंड पैराग्राफ में, जहाँ पर लिखा है कि अंगकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का वह निर्माण करवाया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने, यानी कंबोडिया या कंबोज में अंगकोर वाट मंदिर जो है वो अभी भी स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है, वियतनाम का प्राचीन नाम क्या है? ये पेज नंबर 26 पर है, 26 पर भी पियर ही ये इसका आंसर है, जो चंपा टॉपिक लिखा है इसी के नीचे, अंगकोर वाट वाले टॉपिक के नीचे चंपा जो है उसी में आपको फर्स्ट लाइन में समझ आ जाएगा। कंबोडिया या कंबोज के पूर्वी भाग में है ये स्थित और इसी का आधुनिक नाम है वियतनाम। तो यानी वियतनाम का प्राचीन नाम था चंपा। तो ये हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थर्ड जो क्वेश्चन है उसका नाम है, बृहत्तर भारत के किस क्षेत्र में नगरों के नाम भारत के नगरों की तरह हैं? तो पेज नंबर 26 पर ही लेफ्ट साइड कंबोज वाले पैराग्राफ में ही आपको ये लाइन मिल जाएगी, जो सेकंड पैराग्राफ है इसका, जहां हमने अंगकोर वाट मंदिर वाला आंसर पढ़ा था उसमें लाइन लिखा है कि कंबोडिया के अभिलेखों तथा अन्य ऐतिहासिक अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहां के नगरों के नाम भारतीय नगरों के समान थे, जैसे ताम्रपुर, आद्यपुर, विक्रमपुर आदि। तो इसका आंसर होगा कंबोडिया यानी कंबोज। नेक्स्ट है, व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण बिंदु में इसका आंसर आपको मिलेगा, जो 6 पॉइंट है वो पूरा आप लिख देंगे। प्राचीन काल में व्यावसायिक संगठनों को श्रेणी, श्रेष्ठ या गण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपने पढ़ा था कि विश्व का पहला जो विश्वविद्यालय था भारत में था वो, उसे हम तक्षशिला में जो था वो पहला विश्वविद्यालय था भारत का। दूसरा जो नालंदा था वो भी भारत में ही था, ठीक है। तो पहला आ जाएगा तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय था वो भारत का पहला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको पता है। पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया? आर्यभट्ट ने ज्ञात किया, ये हमने गणित वाले टॉपिक में पढ़ा था। चित्ती प्रमेय का प्रतिपादन कौन से गणितज्ञ ने किया? तो पेज नंबर 30 पर लिखा है, लास्ट लाइन लेफ्ट साइड, बोधायन ने किया है चित्ती प्रमेय का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? तो 30 पेज पर ही ज्योतिष और खगोल वाले पैराग्राफ में जो हम पढ़ रहे हैं, आर्यभट्ट जिन्हें ना सिर्फ गणित का पूरा ज्ञान था, ज्योतिष का भी उन्हें पूरा ज्ञान था, और उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया, ये लाइन लिखी है। तो इसमें आंसर आएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख दो खगोल शास्त्रियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर पेज नंबर 30 पर ही ज्योतिष और खगोल वाले टॉपिक में बहुत सारे नाम हैं, उसमें से दो प्रमुख आपको बताने हैं, तो आप बता सकते हैं आर्यभट्ट और नागार्जुन, ठीक है। बाकी वारा मिहिर ने भी बहुत योगदान दिया है, आप कोई से भी दो प्रमुख खगोल शास्त्रियों के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद वाले टॉपिक में हमने लाइन पढ़ी थी। नेक्स्ट है, रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो आयुर्वेद वाले टॉपिक में पेज नंबर 30 पर हमें ये लाइन मिल जाएगी, जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा है नागार्जुन ने रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सर्जन किसे माना जाता है? तो सुश्रुत को विश्व का प्रथम सर्जन माना जाता है, ये हमें मिल जाएगा पॉइंट नंबर 12 जो है महत्वपूर्ण बिंदी का, वहां पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? तो ये इसका जो आंसर है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 26 पर, स्याम लिखा है। तो स्याम को आजकल थाई जाति के नाम पर थाईलैंड कहा जाता है, यानी थाईलैंड का पुराना नाम स्याम था। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत भारत की कौन से दिशा में स्थित है? तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वरना पेज नंबर 24 पर आप जो मैप देखो, मानचित्र बृहत्तर भारत का, उस मैप को दिख जाएगा कि भारत के उत्तरी पूर्वी जो डायरेक्शन है, उत्तरी पूर्वी जो दिशा है, वहां पर तिब्बत स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कहेंगे उत्तरी पूर्वी दिशा में। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है, बृहत्तर भारत में विदेशी व्यापार का वर्णन कीजिए। तो ये हमने बच्चों पूरा टॉपिक पढ़ा था पेज नंबर 27 पर, बृहत्तर भारत में व्यापार। तो जो क ऑप्शन व्यापार वाला पूरा था, उसमें हमने जो फैक्ट्स पढ़े, जो आपके कंसेप्ट आए, वो सब आप यहाँ पर बताएंगे, नेक्स्ट है, बृहत्तर भारत में मुख्य उद्योग कौन कौन से थे उल्लेख कीजिए, तो ये सेम आपको मिलेगा पेज नंबर 27 पर ही, जो नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग का, उसमें लिखा है कि मुख्य उद्योग कौन कौन से थे भारत के, उस पूरे पैराग्राफ में से ही आपको जो सारे 3-4 पैराग्राफ है उन सबको लेकर आपको इसका आंसर देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा तो प्रख्यात था यहाँ पर कपड़े का काम, जो हमारे यहाँ वस्त्रोत्पादन था वो बहुत ज्यादा उन्नति पे था, और हम धातु संबंधी उद्योग भी करते थे, लकड़ी का भी व्यवसाय था, और फिर लास्ट लाइन आप ले लेंगे कि भवन निर्माण, हाथी के दांत से विभिन्न वस्तुएं बनाना, लुहार का व्यवसाय, चमड़े का उद्योग, चीनी, नमक, नील का उत्पादन, ये सब भी उन्नत उद्योगों में शामिल थे। नेक्स्ट है, स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने क्यों हैं स्पष्ट कीजिए। तो जो हमने बच्चों भारत, ये प्राचीन भारत का जो हमने कला पढ़ी थी उसमें हमने स्तंभों के बारे में पढ़ा था, पेज नंबर 28 पर आपको पता चल जाएगा, जो लास्ट टॉपिक है लेफ्ट साइड स्तंभ, उसमें से आप ये पूरा आंसर लिखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने अच्छे से बनाए जाते थे, और जो सम्राट अशोक ने 30 से ज्यादा स्तंभ बनवाए हैं हमारे देश में मौजूद है उसके बारे में फिर आप बताएंगे किस तरह से उन्हें बनाया जाता था, उसका पूरा वर्णन है वो आप बताएंगे, और वो आज तक उसी प्रकार से चमकते हैं, सुंदर हैं, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, ज्योतिष व खगोल के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने पेज नंबर 30 पर पढ़ा था, ज्योतिष एवं खगोल, वहां से आप ये सारे फैक्ट्स बता देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में संस्कृत साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। तो इसको आप पेज नंबर 29 से लिखेंगे, जो संस्कृत साहित्य की सारी रचनाएं लिखी हैं उनके नाम और उनके ऑथर्स के नाम, रचनाकारों के नाम, वो आप यहाँ से लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बृहत्तर भारत में भारतीय सभ्यता व संस्कृति के केंद्र कौन कौन से थे नाम बताइए। तो पेज नंबर 25 से हमने जो बृहत्तर भारत के जो उस वक्त के जो अब देश हैं, है ना, जो बृहत्तर भारत के उस वक्त के राज्य थे जहाँ बहुत विकसित हुई भारतीय सभ्यता और संस्कृति, वो सब आप नाम लिख देंगे उनके। मध्य एशिया में बहुत विकास हुआ, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, कम्बोज, मलाया, स्याम, जावा, चंपा, सुमात्रा, बाली, बोर्निया, लवदेश, ये सभी जो हैं इन सभी में बहुत ज़्यादा फली फूली हमारी भारतीय संस्कृति। भारत में भी जो हम, भारत में तो फूली ही, जो मेन हमारा भारत का जो लैंड एरिया है वो तो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गढ़ था ही, परंतु इन सारे जो राज्य थे उस वक्त जो बृहत्तर भारत का हिस्सा थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा विकास कराया भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, तो वो भी मुख्य केंद्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति के। नेक्स्ट है, बौद्ध व जैन साहित्य किस किस भाषा में लिखा गया है। तो हमें पता है कि मुख्यतः जो हमारा बौद्ध और जैन साहित्य है वो आपको पेज नंबर 29 पर मिल जाएगा, उसके बारे में राइट साइड दोनों टॉपिक हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया, और जैन साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया, परंतु प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं में भी उन्होंने रचनाएं की हैं। कन्नड़, तमिल और तेलुगु में भी जैन साहित्य लिखा गया। अब निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों, जिसमें पहला है, बृहत्तर भारत क्या है स्पष्ट कीजिए। तो बृहत्तर भारत क्या है इसका आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा पेज नंबर, जो फर्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 23 इस चैप्टर का, उसमें आप जब लेफ्ट साइड जो लास्ट पैराग्राफ है संसार के मानचित्र में, ये वाला पैराग्राफ, इसमें पूरा इन्होंने ज्योग्राफिकली बताया है कि बृहत्तर भारत में कौन कौन सा एरिया आता है। तो आप ये पूरा बताएंगे कि जो इन्होंने लिखा है, पूर्व में भौगोलिक सीमाएं बर्मा तक विस्तृत थी, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, और पूर्व दिशा में स्थित मलाया, जावा, सुमात्रा, इन सारे देशों के नाम के, ये सब भी हमारे अंग थे, इन सब पर भारतीय राजाओं का आधिपत्य था, ठीक है। और यहाँ से आप ये पूरा बताएंगे ने जो बगल में राइट साइड तक, जब इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बृहत्तर भारत के नाम से पुकारते थे, ये पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ये सारे देश आ जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन से जो कि बृहत्तर भारत का निर्माण करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बृहत्तर भारत के स्वरूप को समझाइए। तो इस स्वरूप को समझाने वाले आंसर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बृहत्तर भारत के अंगों के बारे में क्या पढ़ा है, यानी कि जो पेज नंबर 25 है और जो 26 है और जो 27 है, इन तीनों पेजेस पे बच्चों जो हमने सारे देशों के बारे में पढ़ा जो बृहत्तर भारत का हिस्सा थे, हाँ, और उसमें हमने जो देखा कि किस तरह भारत की जो संस्कृति और सभ्यता थी वो वहां फली फूली थी, उसके बारे में जब आपको पता होगा तो आप इस पूरे आंसर को फॉर्म कर पाएंगे। और वहीं पेज नंबर 23 पर हमें स्वरूप समझाना है, तो आप जो ये वाला बृहत्तर भारत का जो पैराग्राफ था इससे भी थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं, वरना इन सारे देशों के बारे में पढ़कर आप फिर एक नॉर्मल एक जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे कि ठीक है ये बृहत्तर भारत था, और इसमें मेनली यही चीज आ जाएगी, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप जो पॉइंट्स हैं वो इन अलग अलग देशों से अलग अलग पॉइंट्स ले लेंगे, या आप हर देश का भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, और मुख्यतः इसका जो समरी होगा वो ये होगा कि बृहत्तर भारत का स्वरूप ऐसा था कि हर एक देश में जो बृहत्तर भारत का हिस्सा था, जहाँ भारतीय राजाओं ने शासन किया, तो वहाँ हमारी भारतीय संस्कृति फली फूली, भारतीय भाषाओं का बोलबाला रहा, जो भारतीय कलाएं थी अलग अलग प्रकार की उनका बहुत विकास हुआ, और अलग अलग मंदिर और अलग अलग भवनों का निर्माण हमें वहाँ देखने मिलता है जो भारतीय शैली पर निर्मित है, है ना। तो इस तरह से वो पूरा बृहत्तर भारत जो था हमारा वो निर्मित था, ये उसका पूरा स्वरूप बताएंगे, अलग अलग देशों के भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे आप। नेक्स्ट है प्राचीन भारत की कला का वर्णन कीजिए। तो हमने अभी जो हमारा पेज नंबर 28 है प्राचीन भारत की कला, उसमें टॉपिक है सेकंड टॉपिक, और उसमें हमने पढ़ा है स्थापत्य कला के बारे में जिसमें आते हैं स्तंभ, स्तूप और भवन, गुहागृह, और सेकंड कला पढ़ी हमने मूर्ति कला, थर्ड कला पढ़ी चित्रकला, फोर्थ और फिफ्थ कला पढ़ी हमने संगीत कला और मुद्रा कला। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था, इन सभी को आप इस आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में भारत की क्या देन है, उल्लेख कीजिए। ये पूरा पैराग्राफ है गणित वाला पेज नंबर 30 पर, तो ये इस पैराग्राफ से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, पूरा पढ़ा है हमने। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञान और चिकित्सा, अब इन्होंने दो चीज कही हैं, तो पेज नंबर 30 पर आप जो विज्ञान वाला टॉपिक है फिफ्थ टॉपिक उससे भी लेंगे पॉइंट्स, और जो आयुर्वेद वाला टॉपिक है उससे भी आप पॉइंट्स लेंगे। तो विज्ञान और चिकित्सा, इन दोनों से आप आंसर लेकर अपना बनाएंगे। नेक्स्ट है बृहत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य का वर्णन कीजिए। तो ये हमने पढ़ा था आपका पेज नंबर 27 पर। व्यापार और वाणिज्य पूछा है इन्होंने, तो उद्योग नहीं पूछा है, तो आप सिर्फ ऑप्शन का जो व्यापार है वो डिस्क्राइब करेंगे, और फिर पेज नंबर 28 पर जो ग ऑप्शन है वाणिज्य व आर्थिक संस्थाएं उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, उद्योग को नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंबोडिया, कंबोज में भारतीय संस्कृति के प्रसार का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने स्पेसिफिकली एक देश का नाम दे दिया और उसमें भारतीय संस्कृति का कैसा विकास था ये पूछा है। तो पेज नंबर 26 पर लेफ्ट साइड कंबोज जो टॉपिक है उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है कंबोडिया में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, वो आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए जरूरी है, आपने देखा इन आंसर्स के लिए जरूरी है कि आप इस चैप्टर को थोरोली रीड करें, आपको पता हो कि हर बृहत्तर भारत के हर देश में किस तरह से भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा है, है ना। और आपको जब आप 2-3 बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे फिर आपको चीजें मतलब कंठस्थ हो जाती हैं, फिर आप अपने आप पूरा पूरा आंसर लिख पाएंगे। तो एज ऑलवेज मैं कहती हूँ कि आप रीड करते रहें चैप्टर को, और जब आप रीड करते हैं तो आपको चीजें जो मैंने भी समझाई है वो भी उनसे भी समझ आती है, रिकॉल हो जाती है आपकी माइंड में, और फिर आप पूरे आंसर्स अपने आप बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। और कभी भी रटे मत, जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कभी भी रटनी नहीं पड़ती चीजें, अपने आप आपको याद रहते हैं फैक्ट्स भी। तो रीड करें, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।